नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हमारा स्कंद 3 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 40। मात्रे अध्यात्म किं विधाम शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयया चासो भयं च अतितर्षति। मात्रे अध्यात्म किं विद्धाम शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयया चासो भयं च अतितर्षति। मात्रे अध्यात्म किं विद्याम शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयया चासो भयं च अतितर्षति। मात्रे अध्यात्म किं विद्याम शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयया चासो भयं चातितरिष्यति। मात्र अध्यात्म किं विद्याम शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयया चासो अयम चाति तरिष्ति। मात्र अध्यात्म किं विद्या शमनिं सर्वकर्मणां वितृषेयता चासो अयम चाति तरिष्ति। यया है, यथा नहीं है। यया वितृषेयया चासो, दोनों में इंग्लिश में भी यया है। यया मतलब, यया का मतलब है बाय विच, जिससे। यथा मतलब होता है और। जी धन्यवाद, क्षमा करिएगा प्रभु जी। मैं इस परम ज्ञान को जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। तात्पर्य भाई जी बहेंगे श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रह त्याग के समय कर्दम मुनि अपनी सहयोग पत्नी देवहूति के लिए अध्यात्मिक चिंतित थे। योग पुत्र ने वचन दिया था कि न वे केवल कर्दम मुनि भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरना देवहूति भी अपने पुत्र के उपदेश से मुक्त हो सकेगी। यहां पर एक उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत होता है कि पति आत्म साक्षात्कार के हेतु संन्यास ग्रहण कर करके चला जाता है, और उसका प्रतिनिधि उसका पुत्र जो उसी के समान शिक्षित है घर पर माता के उद्धार हेतु रहता है। सन्यासी अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को सहायक के रूप में अपने साथ रख तो सकता है, परंतु उसके साथ संभोग नहीं कर सकता। किंतु सन्यास आश्रम में वह पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता, अन्यथा कर्दम जैसा व्यक्ति अवश्य पत्नी को साथ रखे होता और आत्म साक्षात्कार की साधना में उसे कोई अड़चन ना हुई होती। किंतु कर्दम ने वैदिक आदेश का पालन किया, जिसके अनुसार सन्यास जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। किंतु उस पत्नी का क्या होता है जिसे पति त्याग कर जाता है? वह पुत्र को सौंप दी जाती है और पुत्र वचन देता है कि उसे बंधन से मुक्त करेगा। स्त्री सन्यास ग्रहण नहीं करती। आधुनिक युग में अनेक बनावटी तथा कथित आध्यात्मिक संस्थाएं तथा समितियां स्त्रियों को भी सन्यास दे देती हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में स्त्रियों द्वारा सन्यास ग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है, अन्यथा विधान होने पर कर्दम उन्हें अपनी पत्नी को साथ लेकर जाते, उसे भी सन्यास दिला देते। किंतु स्त्री को तो घर पर ही रहना था। उसके जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं: बालपन में पिता पर निर्भर, युवा अवस्था में पति पर आश्रित और वृद्ध अवस्था में सयाने पुत्र पर कपिल पर आश्रित रहना। वृद्ध अवस्था में स्त्री की प्रगति उसके सयाने पुत्र पर निर्भर करती है। आदर्श पुत्र कपिल अपने पिता को आश्वासन दे रहे हैं कि वे अपनी माता का उद्धार करेंगे, जिससे उसके पिता अपनी पत्नी के प्रति निश्चित होकर शांतिपूर्वक जा सके। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति शब्दकान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्येशतारिणे। हरे कृष्णा। तो यहां पर ये जो श्लोक है, मात्रे अध्यात्मिकिम विद्याम शमिनिम सर्वकर्मणाम वितर्षे यया चासो भयम चति अर्षति, का मतलब ये श्लोक इस प्रसंग में जो कि कर्दम मुनि का वैराग्य है, स्वयं भगवान कपिल के द्वारा कहा गया है। भगवान कपिल अपनी माता को सांत्वना दे रहे हैं, अपने पिता को सांत्वना दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, पुत्र का कर्तव्य है कि अपनी माता को आध्यात्मिक विद्या। मात्रे मतलब है माता, आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म की विद्या, विद्याम मात्रे अध्यात्मिकम विद्याम शमनम सर्वकर्मणाम। और ऐसी विद्या है यह आध्यात्मिक विद्या जो समस्त भौतिक कलमश को शमन दमन कर सकती है। शमन और दमन एक ही तरह का अर्थ है। शमनम सर्वकर्मणाम सारे का समाप्त कर सकती है। वित्रेशे यया चासो मैं प्रदान करूंगा, वित्रेशे मतलब मैं ही दूंगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, आप सन्यास लेकर जा रहे हैं। वित्रिशे ये आचासो मैं ही करूंगा अपनी माता को प्रदान। भयम च अतिशर्यति आप भय मत करिए। अति तर्षति का मतलब है तर जाएंगी ये माता, जब ये ज्ञान को सुनेंगी तो ये भी तर जाएंगी। तो इस प्रकार से मात्रे अध्यात्मिकिम विद्या, मैं अपनी माता को क्या प्रदान करूंगा? अध्यात्मिक। तो एक पुत्र का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो अपनी माता को आध्यात्मिक विद्या प्रदान करे। परंतु आजकल हम देखते हैं इंडिया टीवी ब्रह्मचारियों को उठा के ले जाती है और कहते हैं आजकल बच्चे इंजीनियर डॉक्टर जो है ना वो इस्कॉन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि घर में उनके ऐसा माहौल नहीं होता जहां वो भक्ति को अनुगमन कर सके, भक्ति पालन कर सके। माता पिता कहते हैं अरे हम भी तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं की पूजा करना भगवान की पूजा करना नहीं है। भगवान की पूजा करने का मतलब है केवल कृष्ण की पूजा करना। परंतु अधिकतर लोग सोचते हैं सभी देवी देवता बराबर हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह प्रचार करने गया था तो एक ज्ञानी पुरुष आया, बहुत ही ज्ञानी था। उसे लगभग 700 श्लोक भगवद गीता के याद है और भागवतम के भी तकरीबन 1000 श्लोक, 18000 में से 1000 श्लोक याद है उसको। अब वो ये कह रहा था कि भगवान जो है वो कैसे हैं, कृष्ण रूप लेकर के आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मनुष्य जो है अगर ये समझता है कि भगवान भी मनुष्य है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मूढ़ाम न अभिजानति मनुष्यम तनुमाश्रितम, वो सोचता है कृष्ण शरीर लेकर के आए थे। कुछ समझदार लोग इतना पहुंच समझ जाते हैं कि विष्णु का अवतार कृष्ण हुए, लेकिन कुछ ना समझ इससे भी आगे होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान तो क्या है, एक शक्ति है, और वो शक्ति जब अपना विस्तार करना चाहती है तो देवी देवताओं का रूप लेती है और गीता सुनाने के लिए कृष्ण रूप लेती है। इसीलिए कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया, लिख दिया गया भगवान उवाच। अगर कृष्ण भगवान होते तो कृष्ण उवाच नहीं लिखते। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतने सारे लोग थे, सबको भगवान क्यों नहीं कहा गया, अर्जुन भगवान, धृतराष्ट्र भगवान, परंतु कृष्ण के आगे ही भगवान लिखा गया क्योंकि भगवान ही कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान है। नहीं समझ में आता। तो कहते हैं अभी कुछ दिन पहले हमारे पुत्र को स्कूल से एक पुस्तक मिली, उस पुस्तक में आखिरी अध्याय है, भगवान कृष्ण की पुस्तकें लाता है कैसे संस्कार है, आखिरी अध्याय में लिखा है भगवान कृष्ण की मृत्यु, हाउ कृष्णा वॉज किल्ड, उसका आखिरी अध्याय है भगवान की मृत्यु। भगवान की मृत्यु कभी होती है? भगवान की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति स्वर्जना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म के दिव्य रस को समझ जाएगा, और कैसे समझ जाएगा, एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से। अभी लोग प्रश्न पूछते हैं तत्व क्या है, तत्वता का कृष्ण भगवान है, कुरुक्षेत्र में आए, युद्ध किया, भगवान ने मदद करी अर्जुन की, उसके बाद पांडवों को विजय दिलाई, द्वारका गए, सांब आदि का उद्धार करवाया, इतने सारे राक्षसों का वध किया, बाद में अपने परिवार का नाश किया, एक भैया ने तीर मारा भगवान के पैर में और भगवान पलायन करके मर गए। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा उस व्यक्ति से कि आप बताइए अगर भगवान के पांव में तीर लगा और भगवान पलायन कर गए तो उनका शरीर कहाँ है, कहाँ दफनाया गया, अंतिम यात्रा में कहाँ जलाया गया। बोले नहीं नहीं मनुष्य और भगवान के बीच में ये दिव्य पुरुष होते हैं, इसीलिए कहा गया परमम पुरुषम दिव्यम, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया। वो कह रहा है परमम पुरुषम दिव्यम, ये दिव्य है लेकिन ये भगवान नहीं है, ये ऐसी धारणा बना रखी है। फिर मैंने उनको 12वें अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक दिखाया भगवद गीता, जिसमें भगवान अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान आप निराकार हैं साकार हैं, तो भगवान उत्तर देते हैं कि मैं साकार भी हूं निराकार भी हूं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं साकार भी हूं निराकार भी हूं, लेकिन निराकार उनके लिए हूं जो ध्यान में मग्न रहते हैं और साकार उनके लिए हूं जो प्रेमी भक्त होते हैं। तो कैसे, उदाहरण से समझे, जैसे जल, जल जब शांति में होता है, ठंडक में होता है, तो जल बर्फ बन जाता है। हिमालय में शांति है, ठंड है, तो बर्फ बन जाता है। आपके फ्रिज के अंदर शांति रहती है तो वो बर्फ बन जाता है, लेकिन वही बर्फ जब बाहर निकलती है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की गर्मी जब उसको लगती है तो वो बर्फ पिघल जाती है और कैसी हो जाती है, निराकार रूप ले लेती है। तो वो लोग जो गुस्से से, ज्ञान के अहंकार से पीड़ित है, उनके शरीर की गर्मी, उनका ताप इतना बढ़ता है कि परमात्मा कहता है मैं साकार रूप से पिघल के निराकार रूप में हो जाता हूं, बारहवें अध्याय का दूसरा तीसरा पहला पढ़िए। क्यों हो जाता है? तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो ना पछतायो। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे उत्तम प्रेम है। तो यहां पर कर्दम मुनि जब अपना घर त्याग करके जा रहे हैं तो उनके पिता को वो कह रहे, आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं अपनी माता को विद्या कौन सी दूंगा? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विद्या। हम अपने बच्चों को कौन सी विद्या दे रहे हैं? इंजीनियर, डॉक्टर। और जो लोग भक्त बन भी जाते हैं वो अपने घरों में जाकर के कुछ गलत देख करके चर्चा करते, पता है आज मंदिर में ये गलत हो रहा था। उनके बच्चे सोचते हैं मंदिर में भी तो गलती होता है, तो मंदिर जाने का क्या फायदा? आपकी दृष्टि गलत है इसलिए आपको गलत दिखता है। आपकी दृष्टि 20 साल भक्ति करके दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता। दृष्टि को सुधारने के लिए आपका मन 24 घंटे अहिर्निश भगवत भजन में लगा रहे। एक बार रिजोल्यूनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक भक्त ने कहा, महाराज मंदिर में इतना कुछ गलत देखते हैं, भागवतम कक्षा में लोग ही नहीं आते, प्रसाद रख दो हजारों लोग आते, क्यों लोगों की भागवत के प्रति शरणागति नहीं है? कह रहे अपने अपने कमरों में ब्रह्मचारी बैठे रहेंगे लेकिन भागवत सुनने नहीं आएंगे। क्यों? भागवत व्यक्ति को देखने आते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है बुरा है, भागवत सुनने नहीं आते। तो भगवान की भागवतता को अभी तक समझ नहीं पाए महाराज, तो क्या करें? तो हमें दिखता है तो हमारा भी उत्साह गिर जाता है कि बड़े बड़े सीनियर डिवोटी कमरों में बैठे हैं लेकिन भागवत सुनने नहीं आते, हमारा उत्साह गिर जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, मैं आपको एक मटका देता हूं और उस मटके में पूरा मटके के कॉर्नर तक पानी भर लो और फिर परिक्रमा लगाओ पूरे मंदिर की, एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, फिर आके मुझे बताओ आपने क्या क्या देखा, जाइए। तो व्यक्ति बोला, महाराज आप बोल रहे हैं कि हम जाएं और फिर आकर के आपको बताएं, बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब हम मटका लेके जाएंगे और ऊपर तक पानी भरा होगा एक भी बूंद न छल के, तो उस समय तो हम मटके में ध्यान देंगे कि मंदिर में ध्यान देंगे? तो महाराज बोले, बस यही करना है, अपने जीवन को इतना कृष्ण सेवा से भर दो कि उसकी एक बूंद न छलक जाए, इस ध्यान में इतना मग्न रहो कि चारों तरफ 24 घंटे घूमो फिर भी कुछ गलत ना करना है। तो व्यक्ति बोला कि अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें, भाई मैनेजमेंट में भी तो होते हैं, जब सीनियर हो जाते हैं तो मैनेजमेंट आ जाता है। बोले प्रभु महाराज, मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर देखना हो तो? बोले मैनेजमेंट की दृष्टि से आपको त्रुटि नहीं दिखेगी, सुधार दिखेगा, त्रुटि नहीं दिखेगी, सुधार। बोले लेकिन जिसने त्रुटि की है उसके लिए तो मन में आता है ना, उसके लिए तो मन में आता है कि कैसा कर दिया। तो महाराज ने कहा, अगर त्रुटि है और आपके मन में आता है तो हु इज एट द फॉल्ट, परेशानी में कौन रहेगा, वो या आप? क्योंकि त्रुटि आपको दिखी, गुस्सा आपको आया, मन में आप सोच रहे बोलते रहे नहीं हो, तो नुकसान में कौन रहेगा, वो जो चिंतन कर रहा है, है कि नहीं? तो इसलिए अपने को इतना आध्यात्मिक सेवा में लगाना चाहिए कि हमारे दृष्टि न जाए चारों तरफ क्या चल रहा है। भागवतम एक ऐसा विषय है, देख करके बड़ा अफसोस होता है जब मंदिर के प्रांगण में भागवत श्रवण के लिए नहीं आते, और अधिकतर देखा गया कथा के समय कम होते हैं, प्रसाद के समय अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि वो बदलना ही नहीं चाहते। सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, उठो उठो चार बज गए उठो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 4 बजे अलार्म को बंद करके सोया है दोबारा से रजाई ओढ़ करके, और पता है उसे कि ठंड पड़ रही है, कहां जाऊंगा भागवत सुनने, अरे बुक तो घर में भी पढ़ लूंगा बाद में, सुनने क्या जाना। तो वो व्यक्ति की दृष्टि कभी भी भौतिक से आध्यात्मिक होनी पाएगी। आध्यात्मिक किम विद्याम, उसको भौतिक विद्या तो मिलेगी, आध्यात्मिक किम विद्याम, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या कैसे मिलती है? जब हम गुरु की सेवा करते हैं। ये भागवत सुनना श्रील प्रभुपाद की सेवा है। प्रभुपाद ने रात दिन बैठ करके इस भागवत को लिखा, किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। हमें सुनने का समय नहीं है, बोलने का समय नहीं है, बिजी है। किस में बिजी है? बोले जी थक गए, बीमारियां हैं। जबकि कहते हैं हरिनाम सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में भगवत गमन से पहले 1977 नवंबर में प्रभुपाद ने 14 नवंबर को भगवत धाम में प्रवेश किया। समाधि लेने से पहले श्रील प्रभुपाद 6 महीने पहले वृंदावन में थे। उनकी सेवा में हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सारे महाराज उनके भक्त थे। प्रभुपाद भक्तों से कहते हैं कि मेरे को है ना बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं यहाँ रहूं वृंदावन में, मेरा मन करता है जैसे लोकनाथ स्वामी पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर रहा है पद यात्रा, मेरा भी मन करता है मैं पद यात्रा में जाऊं। तो भक्ति चारू महाराज और तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद आप कैसे जाएंगे, छोटा सा भी झटका लग गया अगर आपको वृंदावन परिक्रमा का भी तो आपके प्राण तुरंत निकल जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ सदा विराजमान रहे, ये शरीर छोड़कर ना जाए, क्योंकि अभी आपका मिशन अधूरा है। अभी आपने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक ही इसका ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। हम चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के कम से कम 90 अध्यायों को आप अनुवाद करें। प्रभुपाद ने कहा नहीं, बाकी की सेवा तुम्हारी है, मैंने सभी कार्य कर दिया है, आगे का कार्य तुम्हारे हाथों में, अब तो मैं बस अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ, हरिनाम सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जो मैंने सिखाया उसका आप लोग पालन किस तरह कर रहे हैं। तो फिर उनके एक वैद्य थे जो उनके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहे थे जिन्हें कविराज कहते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज। कविराज एक परंपरा भी है जिसमें वैद्य लोगों को कविराज टाइटल दिया जाता है, कविराज। तो एक कविराज थे, बहुत दूर से आए थे और वो प्रभुपाद जी के लिए अलग अलग औषधियां ढूंढ ढूंढ के लाते थे, वृंदावन में खिलाते थे। किडनियां खराब हो गई थी तो वो कहते थे मैं ठीक कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि सारे भक्त उनको उठा रहे हैं बिठा रहे हैं बच्चे के समान। तो प्रभुपाद अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ भी मुझे इसी प्रकार प्यार करती थी, उठाती थी बिठाती थी। तो मेरी माता चाहती थी कि मैं लंदन जाके बैरिस्टर बनूं और मेरे पिता चाहते थे मैं राधा रानी का भक्त बनूं। तो जब मेरी माँ कहती थी तुम लंदन जाके बैरिस्टर बनो वकील बनो तो मुझे मन में आता था मेरी माँ सही कहती है, मुझे एक गोरी औरत से विवाह करना चाहिए और वहां जाके गोरे गोरे बच्चे पैदा करने चाहिए, कितना अच्छा होगा जब मैं काला, मेरे परिवार की पत्नी गोरी और मेरे बच्चे भी सफेद रंग के होंगे। लेकिन जब मैं आज अमेरिका के लॉ कॉलेजों के आगे शहर पे निकलता हूँ, लंदन यूनिवर्सिटी के आगे जब शहर पे निकलता हूँ और मेरे पीछे हजारों सफेद शिष्य घूम रहे होते हैं तो मैं याद करता हूँ कि मेरी वाणी मेरी सोच मेरी माँ की वाणी मेरी सोच सक्षम हुई सत्य हुई कि आज मेरे हजारों सफेद बच्चे हैं, पर वो बात अलग है बिना पत्नी के हैं, हजारों सफेद बच्चे हैं और ये बच्चे अब मेरे बुजुर्ग होने पर मेरे माता पिता के समान बन गए हैं, जो मुझे उठा रहे हैं बिठा रहे हैं खिला रहे हैं। तो मुझे अपनी माता की बहुत याद आती है कि मेरी कितनी माता है कितने पिता हो गए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं परिक्रमा पे जाना चाहता हूँ। भक्त कहते नहीं नहीं प्रभुपाद आप इवन वृंदावन परिक्रमा पे भी नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी वृंदावन परिक्रमा करने की, तो प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने जाने नहीं दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं मुझे अब ऐसा भी लगने लगा है जैसे मैं भीष्म पितामह हूं जो कि अंतिम सैया पे लेटे थे और उनकी एक ही अभिलाषा थी। 2 महीने तक भीष्म पितामह लेटे रहे, उनकी एक अभिलाषा थी कि मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्यागूं। तो मेरी भी वही अभिलाषा है कि हरिनाम के समय में अपने प्राणों को त्यागूं, कहीं राजा कुलशेखर की लिखी हुई कविता सत्य ना हो जाए। क्या कविता थी कि ये जो मेरा कंठ है एकफित वात से अवरुद्ध ना हो जाए मरते समय कि कृष्ण का नाम ही ना स्मरण हो पाए। तो राजहंस के लिए कुलशेखर महाराज कहते हैं कृष्ण तदिया पाद पंकज, उसमें वो कहते हैं कि जो पंकज एक कमल की डंडी होती है उसमें राजहंस की गर्दन घुस जाती है और वो मर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो राजहंस कमल की डंडी में बंध करके अपने प्राण त्यागता है, मैं भी कफ पित्त वात की डंडी में बंध कर प्राण ना त्याग दूं। तो भक्तों से कहते हैं ले आओ श्रीमद् भागवतम, इंग्लिश संस्कृत वर्ड्स पढ़ो, मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं। अपने अंतिम समय विश्व प्रभुपाद भगवतम के 10वें स्कंद का ट्रांसलेशन अनुवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे भीष्म पितामह के लिए रण क्षेत्र था, क्या यह रण क्षेत्र था कि वो तीर चला रहे थे, ऐसे ही मैं भी आखिरी समय तक शस्त्र जो है वो शास्त्र रूपी शस्त्र चलाता रहूंगा, और अंतिम समय में कृष्ण दर्शन देने आए तो मुझे भी कृष्ण दर्शन देने आएंगे। अंतिम समय में हरि नाम, नाम नामी में भेद नहीं है, हरि नाम रूपी कृष्ण आए और उनको अपने साथ भगवत धाम लेके गए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने को भीष्म पितामह से तुलनात्मक करते हैं, वो भागवतम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। हम कैसे आज भी भागवतम बोलना पढ़ना सुनना, कितने दिन होते हैं भक्तों के भागवत का स्पर्श तक नहीं करते। ग्लानी आनी चाहिए उस भक्त को, उस रात खाना नहीं खाना चाहिए जिस दिन वो श्रीमद् भागवत का श्रवण स्पर्श या अध्ययन न कर, कम से कम स्पर्श तो कर ले, मुझे माफ करना ये श्रीमद् भागवतम मैं आपको कल अध्ययन करूंगा। भगवान साक्षात भगवान है। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत सुनाने बैठे, देवी देवता ऊपर से आए स्वर्गलोक से और बोले एक कलश लेके आए हैं अमृत कलश, इसका पान करा देते हैं परीक्षित महाराज को, मृत्यु का ही तो टेंशन है, इनका प्रश्न है 7 दिन जिसकी मृत्यु में रह गए उसको क्या करना चाहिए, इनको श्रीमद् भागवत का पान कराने की बजाय इनको भागवत अमृत का पान कराने की बजाय इनको किसका कराते हैं, सुधा अमृत का पान कराते हैं। सुधा अमृत मतलब जो ये ऊपर स्वर्ग लोक का अमृत, सुधा अमृत बोलते हैं उसको, सुधा अमृत का पान कराते हैं। भागवत अमृत का पान क्यों कराना, सुधा अमृत पान कराते हैं ये जीवित हो जाएंगे, भागवत का पान आप हमको करा दो। परीक्षित महाराज ने कहा सुधा अमृत मेरी उम्र तो बढ़ा सकती है परंतु आध्यात्मिक विद्या प्रदान नहीं कर सकती है। आध्यात्मिक विद्या प्रदान होने से मेरी आत्मा पुष्ट होगी, मेरी आत्मा बलशाली होगी और आत्मा बलशाली होने पर मुझे कृष्ण का धाम प्राप्त होगा। स्वर्ग लोक कैसा है, स्वर्ग लोक है जहां पर जैसे ही प्रवेश करो, जैसी माला आपने मेरे गले में डाली ऐसी एक माला व्यक्ति के गले में डाल दी जाती है, और स्वर्ग के अंदर पहले दिन जब वो व्यक्ति अपने पुण्य कर्म प्राप्त करके स्वर्ग पहुंचता है ऐसी माला डालते हैं और देवी देवता ध्यान से देखते रहते हैं सीसीटीवी कैमरा की तरह। ये माला धीरे धीरे मुरझाती है एक एक दिन करके, जितने पुण्य है उतने दिनों तक ये माला हरी भरी रहेगी और एक समय आएगा अंत में ये माला पूर्ण रूप से मुरझा जाएगी। जैसे ही मुरझा जाए समझ लो अब मेरे नीचे जाने का। तो जितने देवी देवता अमृत कलश को लेके आए थे, सुधा अमृत को लेके, उन सबकी मालाएं कैसी थी, मुरझाई हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये अब समय समाप्त हो, पर वो स्वर्ग का भोग कर चुके थे इसलिए वो क्या चाह रहे थे, भागवत अमृत का पान हो जाए। और यहां पर परीक्षित को सोच रहे हैं ये तो पृथ्वी का व्यक्ति है, इसको क्या दे देता हूं, सुधामृत दे के लंबा जीवन। क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर इस मृत्यु में लोक में वापिस आना पड़ेगा। तो भागवत की प्रति ना मैं सोचता हूं घर घर जाकर कैसे लोगों को उजागर कर दो, ये मेरा अपना निजी भावना है। जब मैं देखता हूं स्कॉन के अंदर भी हमारे भक्त भागवत के प्रति शरणागत नहीं है, जो ब्रह्मचारी बन जाता है वो फिर भी भागवत सुनने लगता है, जो फुल टाइम बन जाता है वो भागवत सुनने लगता है, परंतु कैसे लोग हैं, हजारों लोग स्कॉन से जुड़े हैं परंतु भागवत श्रवण के लिए नहीं आते। संडे के दिन आते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो बोले उस दिन चलो कुछ सुन लेते हैं, ठीक है कम से कम संडे को ही आओ, आओ तो, लेकिन रोज कैसे। भगवान ने तो कहा नित्यम भागवत सेवा, शास्त्र प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में कहा गया नित्यम भागवत सेवा, भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। कैसे हो, अगर पढ़ नहीं सकते हो सुन नहीं सकते हो तो पढ़ लो, वैसे पढ़ना नव विद्या के अंदर आता नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इनमें कहां आया अध्ययनम। लेकिन फिर भी लोग श्रवण नहीं कर सकते तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, मेरे जैसे पतित लोगों के लिए मैं रोज सुन नहीं पाता हूं मंदिर से दूर रहता हूं, तो अध्ययनम। श्रवण करते हैं पर ऑनलाइन श्रवण करते हैं, है ना, ऑनलाइन श्रवण कर लेते हैं लेकिन करते हैं। श्रवणम साथ में क्या है, स्मरणम। स्मरणम नहीं होगा, कीर्तनम नहीं होगा तो स्मरणम नहीं होगा। अध्ययनम की विधि बताई नहीं है प्रहलाद महाराज ने, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने क्यों किया, प्रभुपाद अंतिम समय भी श्रवण कर रहे हैं और फिर उसको लिख रहे हैं ताकि कोई भक्त इसका अध्ययनम कर ले। लेकिन हम ऋण से कभी भी मुक्त नहीं होंगे जब तक हम इनको रोज नहीं पढ़ेंगे अपने अंतिम समय तक। रोज हॉस्पिटल में भी है ना, तब भी प्रयास करना चाहिए, कोई व्यक्ति को फोन करके बोल दें कि प्रभु मैं अब ना हॉस्पिटल में हूं 15 दिन, मेरा टांग टूट गई है, मेरे को ये बीमारी है, कृपया कर आप श्रीमद भागवत को लाके मुझे रोज श्रवण करा सकते, आपकी सेवा है। कौन मना करेगा, व्यक्ति जाएगा। आप में ऐसा हो तो इच्छा अभिलाषा, तो थोड़ा सा बुखार क्या आता है, व्यक्ति कहते हैं हो गया भागवत श्रवण, है ना, पंडा खाली पड़े हैं, खाली पड़े मंदिर, दुख की बात है। प्रभुपाद जी को बहुत द्रवित होते हैं, दुखित होते हैं जब वो देखते हैं कि भक्त इतने लंबे लंबे तिलक लगाते हैं या पार हो जाती है यहां तक, कंठी पहनते मोटी मोटी, लेकिन भागवत के प्रति उनका रुझान नहीं है। देवी देवता उस अमृत को समझ रहे हैं क्योंकि वो देख चुके हैं स्वर्ग में जाके भी कोई फायदा नहीं, वो देना चाहते हैं, परीक्षित मारा रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं मुझे तो भागवत अमृत चाहिए। नित्य ने प्रश्न पूछा एक में कि भागवत जो है इसका नाम भागवत क्यों पड़ा, श्रीमद भागवत। भागवत का नाम इसलिए भागवत है क्योंकि भगवताम प्रोक्ताम इति भागवतम, भगवान के द्वारा बोला गया इसीलिए ये भागवत है। वो कह लेकिन भगवान ने कहां बोला इसको, तो सुखदेव गोस्वामी मेरे परीक्षित को बोला, इसको तो सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को बोला, भगवान ने कहां बोला। तो भगवतम के दूसरे स्कंद के अंदर चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक जो कि स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए, उन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार रूप में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बन प्रकट किया। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद भागवतम तो 4 श्लोक की है, चतुश्लोकी भागवत जो भगवान के द्वारा बोले, वेद व्यास जी ने 18,000 लिखी और आपने उन 18,000 को भी तात्पर्य लिख दिए इतने सारे, गीता प्रेस की आती है छोटी सी भागवतम, आपने इतने सारे भागवतम के 18 वॉल्यूम बना दिए, है ना, क्यों आपने इतने विस्तार में लिखा। और एक तरफ आप कहते हैं कृष्ण तो इस बुद्धि से जानने से परे है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ये सार है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद ने कहा उन 4 श्लोकों को श्रीमद भागवत के वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में लिखा और मैंने अपने तात्पर्यों को इतना विस्तार में इसलिए लिखा ताकि मैं आपको यह समझा सकूं, तो सर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दैट टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने इसलिए इतना लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि भगवान को समझना सच में बहुत मुश्किल है, वरना लोग सोचते हैं भगवान के पैर में तीर लगा और मर गए, ऐसे भी है ना, बड़े राइटर हैं, स्कूलों में भी बुक्स लग जाती हैं, खूब बिक्री भी हो रही है, पैसे भी कमा रहे हैं, बड़े बड़े पद्मश्री अवार्ड भी मिल रहे हैं, टीवीओ में फोटो भी आ रहे हैं, अखबार में फोटो आ रहे हैं, लोग नीचे लिखा के भी दिखा रहे हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने कृष्ण के ऊपर लिखा। एक मेरा पुराना मित्र है स्कूल का, एक दिन मुझे मेट्रो में मिला, घर के पास ही रहता है पर मैं बातचीत नहीं करता हूँ क्योंकि वो उसे मैं जब भी देखता हूँ वो सिगरेट की दुकान में सिगरेट पी रहा होता है। उसने भी MBA किया है, मैंने भी प्रबंधन क्षेत्र में पढ़ाई करी है मैनेजमेंट। तो वो मुझे एक दिन कहता है, अरे डूड ये आप पंडित कब से बन गए। तो मैंने उनको कहा हम तो पंडित ही हैं सारे के सारे, जीवात्मा है भगवान की दासी हैं, परंतु इस बात का ज्ञान भेद होने में बहुत समय लग गया, बहुत समय लगा। खैर इट इज नॉट सो अर्ली, ये जल्दी आप नहीं बन गए हो थोड़ा। मैंने कहा कि मुझे तो देर हो गई है, पैदा होते ही पहले दिन बोलना चाहिए था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो पैदा होते ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तो देर से बोला। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो आजकल। खाया मैं ना ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, और क्या करते हो। बोला बस ऑनलाइन बुक्स लिखता हूँ। मैंने बुक्स वेरी नाइस, तो फिर आप और हम एक ही कैटेगरी, मैं भी बुक्स पढ़ता लिखता हूँ, आप भी पढ़ते लिखते हैं। कहा क्या बुक लिख रहे हो। कह रहे आई एम राइटिंग बुक ऑन विष्णु। हाँ अरे तू और मैं तो एकदम, बट यार वो सिगरेट पीना और ये विष्णु समझ नहीं आया। कहा एक्चुअली मैंने सारी बुक्स पढ़ी इतने समय में, जितने समय में तुमने पढ़ी मैंने भी पढ़ी, मैंने ये जाना सबसे ज्यादा सरकास्टिक कैरेक्टर, सरकास्टिक हसी प्रद हसी योग्य विष्णु है, हास्य। और मैं सरकास्टिक विष्णु पे क्या लिख रहा हूं, एक बुक लिख रहा हूं, और वो मैनेजमेंट, वो ऑनलाइन बुक सेल भी होगी, अमेजन के साथ उसका बिजनेस भी हो जाएगा, देखने वाले विष्णु का फोटो देख के क्लिक करके परचेज भी करेंगे, पैसा भी मिलेगा। लेकिन ज्ञान क्या मिलेगा, थर्ड क्लास। आचरण क्या है, सिगरेट पीता है रोड पे खड़े होकर, विष्णु पे किताब लिख रहा है। और आप लोग ही, जब आपको ऐसे लोग मिलेंगे आप उनका कार्ड लोगे, उनसे फोन करोगे, बड़े पैसे वाला है प्रभु जी, ये भी पुस्तक लिखता है। वो पुस्तक लिखना, एक प्रभुपाद की पुस्तक लिखने में जमीन आसमान का भी दूर कर दो उतना अंतर है, वो अंतर है। वो पुस्तकों को लोग पढ़ रहे हैं। तो ये यहां पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर शमनम सर्व कर्मणाम, उन्होंने कहा मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो सभी भौतिक कर्मों का विनाश कर देगा। और इसमें कहा गया कि सर्व कर्मणाम के अंदर लिखा है समस्त करने वाली सिद्धि और आत्मदर्शन। प्रभुपाद लिख रहे हैं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मेरी माता को और आत्मदर्शन। आत्मदर्शन मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कार इतना सरल नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान भी आए हम भी आए, दोनों में भेद क्या। तो एक सुंदर आचार्य दृष्टांत देते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति गिर गया कुएं में, दूसरा व्यक्ति गांव का निकल रहा था, उसने देखा कुएं में गिरा हुआ है, उसने रस्सी बांधी, पेड़ से नीचे उतरा और उसको गले लगाया और कहा चलो भाई ऊपर निकल। इतने में शोर शराबा सुन के तीसरा आया, उसने देखा कुएं में दो व्यक्ति गिरे हुए हैं, लेकिन उसने क्या नहीं देखा, दूसरे व्यक्ति की रस्सी बंधी हुई है, एक अपनी गलती से अंधकार के कारण गिर गया है और दूसरा निकालने के लिए नीचे उतरा है। तीसरे व्यक्ति ने शोर मचा दिया, दो गिर गए दो गिर गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दो लोग कुएं में गिरे हुए, लेकिन दो लोग नहीं गिरे थे, एक गिर गया था और दूसरा निकालने के लिए बचाने के लिए। ऐसे ही गुरु कृष्ण शास्त्र ये वो चीज है जो गिरी नहीं है, हमें निकालने के लिए इस कुएं में आती है, इस भौतिक संसार में। कृष्ण इस संसार में आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि वो गिर गए हैं हमारी तरह। अरे कृष्ण भी तो आए, भगवान ने मनुष्य शरीर लिया, जैसे अशोका दी ग्रेट हुआ ऐसे कृष्णा दी ग्रेट हुआ, एक बहुत बड़े राजा हुए पंडित हुए चाणक्य, ऐसे ही पंडित हुए बहुत बड़े ज्ञानी हुए कृष्ण। सॉरी वो जीव है, ये कृष्ण है, ये बचाने के लिए आते हैं व्यक्ति को। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में भगवान सोचते हैं धर्म जैसे गिर जाता है, धर्म गिर गया कुएं में, रस्सी बांध के परित्राणाय साधूनां, साधुओं को निकालने के लिए आते हैं। अब इस साधुओं को निकालने के लिए जब आए उस व्यक्ति को, तो उस कुएं में बहुत सारे मकड़े बिच्छू छिपकलियां थी, उसको काटने लगे इस व्यक्ति को, निकलते हुए व्यक्ति को काटने लगे। अब ये कुएं में गिरने से नहीं मर रहा है, तो कुएं में बिच्छू के काटने से मर जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक छड़ी निकाली यहां से छोटी सी और बिच्छू के सिर पे मार दिया। क्यों मारा, क्यों मारा, ताकि वो उसको काटे ना। तो भगवान जब आते हैं उनकी पहली शिक्षा होती है परित्राणाय साधु नाम, व्यक्ति को बचा लूं और उन बचाने वाले व्यक्तियों को जो कष्ट दे रहे हैं विनाशाय च दुष्कृता, उनको मार दो। लेकिन भगवान इसलिए नहीं आते हैं विनाशाय च दुष्कृता, आया हूं तो चलो परित्राणाय साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम, फिर आते हैं विनाशाय च दुष्कृता। कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं आए, कृष्ण आए विदुर को प्रेम करने के लिए, कृष्ण आए यशोदा मैया को वात्सल्य प्रदान करने के लिए, दामोदर लीला करने के लिए। कृष्ण इसलिए नहीं आया कि कंस को इतना बड़ा बलशाली उसको मार, कृष्ण भगवान किसी को भी बोल देते शिव जाओ तुम मार दो तो शिव मार देते, क्या जरूरत है भगवान को आने की। परित्राणाय साधु नाम, साधु साधु जन हृदय में भगवान का चिंतन करते हैं, हर रात दिन सोचते हैं कब प्रभु का दर्शन होगा। वो भगवान जब नीचे आते हैं है ना, वो भगवान का दर्शन कराने के लिए भगवान अपने भक्तों से भेंट करने, उनसे आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो यहां पर देवहूति माता से उनके पुत्र कपिल भगवान कह रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं। किस लिए आया हूं पिताजी? परित्रणाय साधु नाम देवहूति जैसी सती स्त्री को परित्रणाय करने के लिए आया हूं। आप ये मत समझो मैं आया हूं एक पुत्र के समान, मैं कुएं में उतरता हूं तो बचाने के लिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, शमनम सर्वकर्मणाम, सारे जो इसके कलमश है उनका समाप्ति करके ही ऊपर लेके जाऊंगा, चिंता मत करिए पिताजी आप जाइए। तो पिता जब संन्यास ले लेता है, वानप्रस्थ में तो स्त्री के साथ रह सकता है, गृहस्थ में वो स्त्री के साथ रह सकता है और पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए संभोग कर सकता है। वानप्रस्थ में वो स्त्री के साथ रह सकता है परंतु संतान उत्पत्ति के लिए भी वो अपनी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता, खाली एक सेविका के रूप में उनको रह सकता है, संन्यास में लेकिन स्त्री के साथ भी रह नहीं सकता है ना, ये इतना ऊंचा संन्यास। और आजकल क्या देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं सन्यासी लोग स्त्री को भी सन्यास दे देते हैं। एक वृंदावन में बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है माताओं के, वो ऑरेंज साड़ियां पहन करके प्रवचन देती हैं, है ना, और माँ बन जाती हैं, माँ बड़ी बड़ी बिंदियां लगाकर मेकअप करके माँ, माँ शारीरिक रूप से माँ नहीं है, माँ कौन है, माता धाता पितामह, भगवान कह रहे मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं, दादा भी मैं ही हूं। बचपन में श्लोक बोलते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा, तुमेव माता, माता भी आप हो प्रभु, पिता भी आप। लेकिन लोग सोचते हैं लक्ष्मी नारायण माता पिता। तो व्यक्ति पूछता है भागवतम प्रोक्ता, भगवान के द्वारा बोला गया भागवत, तो इसमें माँ कहां गई, लक्ष्मी जी कहां गई, विष्णु ने बोला लक्ष्मी जी कहां गए। लोगों में इस प्रकार का बहुत ही प्रकार क्वेश्चन रहते हैं भगवान के प्रति। बोले ठीक है भगवान कृष्ण है, भागवतम भगवान प्रोक्ता भागवतम, भगवान के द्वारा भागवत बोला गया, तो राधा रानी कहां गई, वो तो उनकी अंतरंगा शक्ति किशोरी जी ने क्या किया। तो उन्होंने कहा भागवत का मतलब भगवान अगर है तो भगवान के अंदर ही राधा रानी भी है। तो राधा रानी ने भी बोला, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए आगे श्री मद लगा दिया गया, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब राधा रानी, इसीलिए वृंदावन में बरसाना में राधा रानी का मंदिर को बोलते हैं श्री जी का मंदिर, श्री मतलब राधा रानी, इसीलिए भागवत में पहले लगा दिया श्री मद भागवत पुराण, खाली पहले नाम था भागवत पुराण, फिर हो गया श्रीमद भागवत पुराण, क्योंकि भगवान ने कहा भागवत प्रोक्ता भागवतम, भगवान के द्वारा और श्री के द्वारा भी बोला गया, इसलिए श्रीमद भागवत। ऐसे श्रीमद भागवत के ज्ञान को कपिल भगवान अपनी माता को प्रदान कर रहे हैं। परंतु लोग आज देखते हैं कि अगर किसी को पता भी चल जाए मेरे पति ने हरे कृष्णा जपना शुरू कर दिया है, तो माताएं मंदिर में आ जाती हैं और लड़ाई झगड़े करती हैं, आपने हमारे पति को क्या गुमराह कर दिया है, ये हर टाइम साधु बन गए हरे कृष्णा करते रहते हैं, कहीं खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ कहते हैं मंदिर का प्रसाद खाऊंगा, पागल हो गए हैं। लेकिन वो जानती नहीं है, पद्म पुराण के कार्तिक महात्म अध्याय के अंदर वर्णन है कि जो व्यक्ति जो स्त्री अपने पति को भक्ति मार्ग में मदद करती है, सहयोग करती है, वो पत्नी को 50% अपने पति की भक्ति का स्वतः घर बैठे प्राप्त हो जाता है। अगर पत्नी खुशी खुशी अपने पति को उसकी उम्र आने पर, उसकी भक्ति के स्ट्रेंथ हो जाने पर, प्रगाढ़ हो जाने पर, उसके सन्यास में उसकी मदद करती है, तो उस व्यक्ति के सन्यास में की गई सेवाओं का आधा भी पत्नी जिसने सन्यास नहीं लिया उसको प्राप्त होता है, ये शक्ति है। लेकिन किसकी, उसी को प्राप्त होगा जो अपने पति की सहयोग करेगी, पतिव्रता पत्नी, ये यहां पर एस्ट्रिक साइन लगा करके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी। लोग बोलते नहीं नहीं माता जी आप चिंता मत करो, प्रभु जी कर रहे हैं ना, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आप भी माला करिए। नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसी वाली जो है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, उसी को मिलता है जो अपने पति के 16 माला जप करने में सहयोग करती है। लेकिन अब पति की बड़ी जिम्मेदारी हो गई, पति की क्या जिम्मेदारी है कि अगर पति भक्त बन रहा है और पत्नी पतिव्रता है, परंतु भक्त नहीं बन रही है। जी मैं सब कुछ करूंगी, आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, भगवान के लिए भोग बनाऊंगी, संतों की सेवा करूंगी, घर का वातावरण सतोगुणी रखूंगी, लेकिन मेरे से ये माला वाला नहीं होती है, मेरे से चाय वाय नहीं छोड़ती है। ऐसी पत्नी अगर है तो भी वर्णन है। तीसरा, इसमें वैष्णव सदाचार पुस्तिका आप ही के मंदिर में, हमारे मंदिर में मिलती है, आप उसे लेके पढ़े, उसके आखिरी पन्ने पर लिखा है वैष्णव सदाचार पुस्तक के, कि वो पत्नी जो अपने पति की पतिव्रता तो है, सहयोग तो करती है परंतु भक्ति नहीं करती है, उसके भक्ति न करने पर जो अपराध होंगे वो आधे अपराध पति को भी प्राप्त होंगे जो भक्ति कर रहा है। तो भक्ति करने वाले पति को तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है कि अपनी पत्नी को भक्त बनाए, येन केन प्रकारेण भक्त बनाना आवश्यक है। नहीं बनाया तो फंस गया बेचारा। अगर वो पतिव्रता है तो आधा तो वैसे ही ले गई, और अपराध कर रही है तो आधा वैसे दे गई, तो इसका तो जीरो हो गया। तो इसलिए उसको भक्त बनाना आवश्यक है, प्रयास करें कि भक्त बनाना चाहिए। पूरा परिवार जब गृहस्थ जीवन में भक्त होगा तब इस प्रकार के पुत्र उत्पन्न होंगे जैसे कौन है, कपिल भगवान। कैसी पत्नी होंगी, देवहूति जैसी होंगी, जो आज पति के जाने पर विलाप नहीं कर रही है, वो यहां पर क्या कर रही है, अपने पुत्र से कह रही है कि मुझे आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान दो, और पुत्र कह रहा है मात्रे आध्यात्मिकीं विद्याम शमनिम सर्व कारणम वितरशेयया चासो भयम चा अतितरिष्टि। माता आप इस भौतिक संसार से तर जाएंगी, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अपनी माता को ज्ञान प्रदान करूंगा। ठीक है, तो हमें भी अपने घर का वातावरण ऐसा ही बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।